शुभ को बहाना बनाकर जैसे तैसे शगुन वापस अपने घर पहुंची। वो इस बात से बेखबर थी कि शुभ उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर में शगुन अपने घर के आगे थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने जो बहाना बनाया है वो सच साबित हो जाएगा। उसके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी और इत्तेफाक से रेशमा आंटी की तबीयत सच में खराब हो गई थी। रेशमा आंटी अपनी बेटी के साथ रहती थीं, उसके अलावा उनका कोई नहीं था। जैसे ही उसकी बेटी आयशा ने शगुन को देखा, वो रोते हुए उसके गले लग गई। ये देखिए ना दीदी, मम्मा को क्या हो गया है? अचानक से इन्हें अस्थमा का अटैक आया और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अच्छा हुआ आप आ गई, आयशा रोते हुए बोली। तुम घबराओ मत, आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। चलो हम उनके साथ चलते हैं, अब रोना बंद करो। शगुन ने आयशा को शांत करवाया और फिर उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। हालांकि रेशमा आंटी की हालत थोड़ी स्टेबल थी, फिर भी एहतियात के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। हे भगवान, मुझे नहीं पता था आंटी की तबीयत सच में खराब हो जाएगी। थैंक गॉड मैं सही टाइम पर आ गई। आयशा अकेली होती तो घबरा जाती। आगे से सोच समझ कर बोलूंगी, क्या पता कब क्या सच साबित हो जाए, शगुन ने अपने मन में कहा। शगुन एम्बुलेंस के साथ वहां से जा चुकी थी, तो वहीं उनसे कुछ दूरी पर शुभ अपनी गाड़ी में बैठा उन लोगों को देख रहा था। मैं कितना बेवकूफ हूँ, शगुन मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? मुझे इस तरह उस पर शक नहीं करना चाहिए था। शुभ को अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। उसने गाड़ी वापस अपने घर की तरफ ली। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा उसकी माँ डिंपल उसी के आने का इंतजार कर रही थी। मैंने लंच के लिए खास तैयारी करवाई थी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो ऐसे ही चली गई, तुम भी बिना बताए उसके पीछे चले गए। ये क्या बर्ताव है तुम्हारा? मुझे वो लड़की भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन सी लड़की इस तरह अचानक अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है? बाकी सब तो छोड़ो, उसका तो कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है। कितनी चीप से कपड़े पहन रखे थे उसने। एटलीस्ट यहाँ आई ही रही थी तो कम से कम हमारे स्टैंडर्ड से मैच करते कपड़े तो पहन लेती। डिंपल ने शुभ को अच्छा खासा सुना दिया। पहली नज़र में ही उसने शगुन को शुभ के लिए रिजेक्ट कर दिया था। आप तो ऐसे जजमेंट पास कर रही हैं जैसे मुझे आपके फैसले का ही इंतजार था। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं उसे यहाँ आपसे मिलवाने नहीं लाया था। उसने कहा तो मिलवा दिया, शुभ ने सीधे सीधे जवाब दिया। उसे डिंपल से बात नहीं करनी थी, इसलिए वो वहां से अपने कमरे में जाने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, डिंपल उसके पीछे से चिल्लाई। उसकी बात सुनकर शुभ के कदम वहीं रुक गए। उसने बिना मुड़े तेज आवाज में कहा, आई रियली डोंट केयर कि आपको वो पसंद है या नहीं, शादी तो मैं उसी से करूंगा। हाँ, अब इतने बुरे दिन आ गए कि तुम कंपनी में काम करने वाली एक मामूली सी मैनेजर से शादी करोगे? तुम्हारे लिए बड़े बड़े खानदानों से अच्छे रिश्ते आए थे और तुम उससे शादी कर रहे हो? कम से कम बिजनेस का तो सोचो, तुम्हारे पापा खुद तो चले गए और पीछे बिजनेस पर इतना बड़ा कर्ज छोड़ गए। अभी तक ये बात लोगों के सामने नहीं आई है। तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो गई तो हम आसानी से बैंक का लोन चुका सकते हैं, डिंपल अभी तक उसे सुनाई जा रही थी। उसकी बातें सुनकर शुभ ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने कमरे में जाने के बजाय वापस उसके पास आया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? इसमें मेरी क्या गलती है कि आपके हस्बैंड मरने से पहले इतना सारा लोन बाकी छोड़कर गए हैं? लेट मी क्लियर वन थिंग, वो मेरे पापा नहीं थे। मैंने अपनी तरफ से इस बिजनेस को काफी हद तक स्टेबल किया है। मेरी वजह से आप एक अच्छी लाइफस्टाइल बिता रही हैं, फिर भी मुझ पर ही रौब झाड़ रही हैं, शुभ गुस्से में बोला। ओ रियली, मेरा हस्बैंड? हाँ, अब तो तुम्हें वो मेरा हस्बैंड ही लगेगा। हाँ, तो वो मेरा हस्बैंड ही था जिसकी वजह से तुम दोनों भाई बहन को एक अच्छी एजुकेशन और अच्छी लाइफस्टाइल मिली, वरना तुम्हारा बाप तो तुम्हें भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ता। डिंपल की एक एक बात शुभ को और भी गुस्सा दिला रही थी। उसकी मॉम की ये दूसरी शादी थी जो उसने अपनी उम्र से ज्यादा बड़े बिजनेसमैन से की थी। शुभ और झलक उनके पहले पति के बच्चे थे। कमी तो आपके नए हस्बैंड ने भी नहीं रखी। ये तो मेरी काबिलियत है कि मैंने उनके डूबे हुए बिजनेस को फिर से खड़ा कर रखा है, वरना मेरा पता नहीं, लेकिन आप जरूर किसी रोड के किनारे भीख मांगती नजर आती। और वन मोर थिंग, आगे से मेरे सामने तेज आवाज में बात मत करना। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, मैं शगुन से भी शादी करूंगा। शुभ ने अपना फैसला सुनाकर बातचीत पर विराम दे दिया। इतनी बहस में भी उसने शगुन के अमीर होने की बात डिंपल को नहीं बताई। वो वहां से अपने कमरे में चला गया। देखो ये लड़का मुझे आंखें दिखा रहा है, डिंपल उसके पीछे से गुस्से में दंदनाती हुई बोली। झलक उनका पूरा कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। उसने अब तक बीच में कुछ नहीं कहा था और उसका पूरा ध्यान मोबाइल में था। जैसे ही शुभ वहां से गया, झलक ने कहा, आप जिस लड़की को मामूली कहकर उसकी बेइज्जती कर रही हैं, वो लड़की एक बड़े बिजनेस टाइकून नवीन गोयंका की बेटी है। बस फर्क इतना है कि आपके पास ज्यादा पैसे ना होते हुए भी आप दिखाने के लिए महंगे कपड़े पहनती हैं, और वो इतनी अमीर होने के बावजूद सिंपल कपड़े पहन के आई थी। झलक ने अपने मोबाइल में नवीन गोयंका की फैमिली पिक्चर निकाल रखी थी। अब यही बाकी रह गया है, तुम भी अपने भाई की तरह मुझे जबान लड़ाओगी? डिंपल ने अपना रहा सहा गुस्सा झलक पर उतार दिया। भाई के गुस्से और एरोगेंस की वजह भी आप ही हैं। आपने पापा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो गरीब थे और अपने ही बॉस से शादी कर ली। आप क्या सबको अपने जैसा समझती हैं जो उसे लड़की को जज कर रही हैं? झलक ने डिंपल की तरफ देखकर मोकिंग वे में कहा और वहां से अपने कमरे में चली गई। उन दोनों की सी बातों ने डिंपल के गुस्से को और भी बढ़ा दिया था। उसने ध्यान दिया आसपास काम करने वाले लोग उनकी बातों को सुन रहे थे, तो उसने उन्हें चिल्लाकर कहा, अपने काम पर ध्यान दो, यहाँ काम करने आते हो या दूसरों की बातें सुनने? डिंपल के चिल्लाने के बाद सब वापस अपने काम में लग गए। उसने अपना गुस्सा शांत करने के लिए पानी पिया और गाड़ी लेकर कहीं जाने के लिए निकल गई। रेशमा की तबीयत ठीक थी, फिर भी प्रिकॉशन के लिए उन्हें एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। शगुन उनकी देखभाल करते हुए हॉस्पिटल में ही थी, तभी उसके पास अनुभव का कॉल आया। अनुभव के पास से प्रार्थना जा चुकी थी। कहाँ हो तुम? शगुन के कॉल रिसीव करते ही अनुभव ने सबसे पहले यही पूछा। हॉस्पिटल आई हुई थी, शगुन ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। पूरे दिन की भागादौड़ी से वो सच में काफी थक गई थी। सब ठीक है ना? तुम थोड़ा लो साउंड कर रही हो। और हॉस्पिटल क्यों आई हो? तुम्हारी तबीयत? तुम बताओ कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं अभी आता हूँ। उसके हॉस्पिटल होने की बात सुनकर अनुभव घबरा गया। इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कहीं हमारे घर वालों ने सुन लिया तो उन्हें सच में यही लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज पूरा दिन यहाँ होने की वजह से थोड़ा थक गई थी। मेरी लैंडलेडी की तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से आना पड़ा। शगुन ने उसे सब बता दिया। वो बाहर वेटिंग एरिया की बेंच पर दीवार से टिकाकर बैठी थी। हाँ, लगा भी था मुझे, तुम्हें क्या हो सकता है? तुम तो दूसरों की तबीयत खराब कर दो, फिर तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कैसे जरूरत पड़ गई? अनुभव ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, जबकि असल में उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। बहुत ही खराब जोक था। खैर छोड़ो, बताओ तुमने मुझे कैसे कॉल किया? लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई, तभी उसके जाते ही तुमने मुझे कॉल किया है, शगुन बोली। हाँ वो तो चली गई है, एक्चुअली मैंने तुम्हें उसकी तरफ से सॉरी कहने के लिए कॉल किया था। सुबह उसका बिहेवियर सच में बहुत खराब था।
हाँ तो उसके लिए तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, वो भी इतनी देर बाद? अगर तुम्हें कुछ कहना ही था या उसका बर्ताव तुम्हें बुरा लगा था तो उसी टाइम कहते, तब तो एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह हाँ बेबी, जी बेबी, यस बेबी कर रहे थे, शगुन ने जवाब दिया। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा बताओ ना तुम कौन से हॉस्पिटल में हो, मेरी यहाँ काफ़ी अच्छी जान पहचान है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अनुभव ने बातों ही बातों में पूछा। हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक है, मैं यहीं के सिटी हॉस्पिटल में आई हुई थी, बस आज की लात निकल जाए फिर कल तक आंटी को डिस्चार्ज मिल जाएगा। शगुन अनुभव से बात कर रही थी तभी आयशा उसके पास आई। आयशा ने शगुन के पास आकर कहा, दीदी आप घर चले जाओ, मैं हूँ मम्मा के पास, सुबह से आप बेवजह परेशान हो रही हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं, सबसे पहले आप जाकर कुछ खा लो। आयशा को पता नहीं था शगुन कॉल पर बात कर रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई बेवजह परेशान नहीं हो रही, बहुत बार मेरी भी तबीयत खराब होती है तब तुम और आंटी मुझे देखते हो। अच्छा बताओ तुमने खाना खाया या नहीं? अनुभव का कॉल छोड़ शगुन उससे बात करने लगी। नहीं वो मुझे भूख नहीं है, आयशा ने परेशान स्वर में जवाब दिया। शगुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और उसके गाल को सहलाकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आयशा ने हाँ में सिर हिलाया। उसने शगुन के कंधे पर अपना सिर रख लिया तो वो उसको धीरे धीरे सहला रही थी। तभी उसे अनुभव का ख्याल आया। उसने मोबाइल चेक किया तो अनुभव का कॉल कब का कट चुका था। बिल्कुल भी वेट नहीं होता इस लड़के से, कुछ पूछने के लिए कॉल किया था तो बात तो पूरी करता, लेकिन नहीं, कॉल कट कर दिया, शगुन ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। रात के लगभग 9 बज चुके थे। आयशा शगुन के कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी तो वहीं शगुन भी दीवार के सहारे आराम करने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे तैसे टाइम पास कर रही थी, तभी उसके सामने अनुभव आया। उसके हाथ में कुछ कैरी बैग्स थे। सरप्राइज! अनुभव ने उसे वो कैरी बैग्स दिखाते हुए कहा। उन बैग्स पर फूड ब्रांड के लोगो बने हुए थे। उसे वहां देखकर शगुन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत खुद को नॉर्मल किया और कहा, इस फ्री सर्विस की कोई जरूरत नहीं थी। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, मैंने सुना कॉल पर आयशा ने कहा कि तुमने खाना नहीं खाया है, अब मैं इतना बुरा भी नहीं कि किसी को भूखा देख सकूं। चलो अब इसे जल्दी से उठाओ, हॉस्पिटल के कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं, अनुभव ने जवाब दिया। लेकिन आंटी, शगुन अपनी बात पूरी करती उससे पहले अनुभव ने बीच में कहा, अरे हॉस्पिटल स्टाफ कब काम आएगा, नर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे पे कर देंगे, वो ध्यान रख लेगी, फिर थोड़ी ही देर की तो बात है, बहाने मत बनाओ, चलो जल्दी से आओ। शगुन ने उसकी बात पर हामी भरी और आयशा को जागने लगी तो वहीं अनुभव नर्स से बात करने चला गया। उसका अचानक वहां आना, वो भी खाने के साथ, शगुन को अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में शगुन, अनुभव और आयशा हॉस्पिटल के कैंटीन में साथ में खाना खा रहे थे। वैसे दीदी आपने बताया नहीं ये कौन है, आयशा ने खाते हुए पूछा। मैं इसका, बोलते हुए अनुभव कुछ पल के लिए रुक गया। शगुन ने उसकी तरफ नामे सिर हिलाया तो उसने बात को बदलते हुए कहा, हम दोनों फ्रेंड हैं, आपका ये वाले फ्रेंड तो बहुत क्यूट और अच्छे हैं, मुझे ये पसंद आए, वरना जो घर पर भैया आते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें देखकर डर लगता है, आयशा खाते हुए साथ में बातें कर रही थी। वो यहाँ शुभ की बातें कर रही थी। आयशा के अनुभव के सामने शुभ की बात करने पर शगुन हड़बड़ा गई तो वहीं अनुभव उसकी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देख रहा था।